शबनमी पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं।
रात मुझे ये कह के चिढ़ाए, तारों से भरी मैं तू है अकेली हाय, तानों से मैं जली जली जाऊं, आज रुको तो बली जाऊं।
मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, मैंने ये क्या कर डाला, जंगल से आती खुशबू लपकने गया, हो गया लापता।
एक लम्हा है तुम्हारा, एक लम्हा है हमारा, आओ लम्हों को मिला दे, जिंदगी फिर बना दे।
कुछ खास है कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ रस पड़ी तन्हाई।
कितनी अजीब दृष्टि है यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितनी
ये हैं वो कुछ गाने जिन्होंने हिंदी फिल्मों में न सिर्फ अपनी लोकप्रियता के साथ पहचान ही बनाई, बल्कि आसान और गहरे भावों के गीतों की जगह का जैसे रास्ता भी बना दिया। सीधे साधे शब्दों में जीवन की गहराई दर्शाते ये शब्द, और इन शब्दों के गीतों के रचयिता हैं संदीप नाथ। आपको फिल्म आशिकी 2 का गाना तो याद ही है, सुन रहा है तू, ये सबके दिलो दिमाग पर छा गया है। ये गाना भी उन्होंने ही लिखा है। तो आइए आज मुलाकात करते हैं इसी गीतकार, शायर, लेखक, फिल्म निर्देशक संदीप नाथ के साथ, और ये पूछने पर कि फिल्म आशिकी 2 के उस गीत को लिखने का मौका उन्हें कैसे मिला, तो वो बताते हैं।
क्या हुआ कि एक फिल्म की थी मैंने, साहब बीवी और गैंगस्टर।
अच्छा।
तो उस फिल्म में 5 संगीतकार थे और अकेला गीतकार था, तो उसमें नवोदित गीतकार संगीतकार आए, जिनका नाम था अंकित तिवारी
जी।
तो वो कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और मेरी माता जी कानपुर से हैं। एक हमारे बीच में कनेक्टिविटी हो गई और हम तब तक 50 फिल्में कर चुके थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई और कहा कि दादा, वो मुझे प्यार से दादा कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो इसमें कुछ मैं चाहता हूँ आप अलग तरीके का कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। और वो ट्यून सुनने के बाद मैंने कहा कि मुझे कुछ अलग तरह के रोमांटिक गाना बनाएंगे, लेकिन रेगुलर रोमांटिक नहीं बनाएंगे, कुछ अलग बनाएंगे। और फिर मैंने कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश की, जिसमें रोमांस और के साथ साथ उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी थी भगवान के साथ या अपने परम मित्र के साथ, जिसे फ्रेंड फिलोसफर गाइड कहते हैं वैसे। तो कोई ऐसी छवि मन में रखते हुए, क्योंकि प्यार को बहुत सतही तौर पर लिया गया है हमारे, ये लेते हैं लोग कि सिर्फ वो होता है जो साथ में खाता है पीता है, या ये मैंने थोड़ा उसका प्यार का फिलोसॉफिकल जो रूप है, स्पिरिचुअल रूप है, उसकी तरफ मैंने जाने की कोशिश की और ये गाना बना दिया।
तो क्या आपने कुछ ऐसा भी सोचा कि कोई शब्द ऐसे होंगे जिनका मैंने प्रयोग करना ही नहीं है?
मैं आपको बहुत ज्यादा डेलिबरेट एफर्ट नहीं था, एक बस मन में इतना लेके चले थे कि हम एक प्यार को रोमानियत और एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे एग्जीबिट करना है हमें
जी।
और वो करते गए, जब गाना बना तो बड़ा थोड़ा सा देर के लिए हम भी चौंके कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो शायद आज की जनरेशन को पसंद कम आता हो, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश चल पड़ा है या बहुत आम फहम शब्द या बहुत ही बोलचाल की भाषा है। तो इसमें भी बोलचाल के शब्द, लेकिन कुछ पिरोया जिस तरीके से दिया है तो एक दो लोगों ने सुन के कहा गाना बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बाउंस हो जाए, कि बाउंस बैक हो जाए, कि आज की जो यंग जनरेशन है उसको कहीं थोड़ा भारी ना लगे, हेवी ना लगे, हेवी वेट ना लगे। बट मैं कहीं ना कहीं मैं और अंकित दोनों कन्विंस थे लेवल पे कि ये गाना ऐसा अच्छा है। और फिर उन्होंने वो गाना, उनकी मुलाकात हुई मोहित सूरी जी के साथ, जो आशिकी 2 के डायरेक्टर है, उनको उन्होंने गाना सुना तो उन्होंने वो गाना लिया और बोले मैं अपनी इसको अगली फिल्म में डालूं। आशिकी 2 तो लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, बट उसकी जो राइटर थी तो उन्होंने जब उस गाने को सुना तो उन्होंने कहा ये गाना जो हमारा गाना बचा हुआ है उसके लिए एकदम मुफीद है। उसके बाद मुकेश भट्ट जी और महेश भट्ट जी ने गाना सुना और तुरंत हम लोग को ऑफिस में बुलाया, और उसके बाद तो बस रस्सी अंतरे और जो है
जी वो तो इस गाने ने तो जैसे एक नया इतिहास रच दिया।
हाँ, इसका श्रेय भी मैं जनता को दूंगा, क्योंकि जो हमारी खुद की एक धारणा थी कि शायद पब्लिक इसको बहुत उस तरह से न ले, बट मैं तो थैंक्स टू यंग जनरेशन एंड एवरीबॉडी कि लोग समझते हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की क्या है कि मैं आपको बताऊं, तभी जब हम देश में होते हैं तो अलग बात है, जब विदेशों में जाते हैं और वहां पर रहने वाले इंडियंस इवन नॉन इंडियंस, मेरे इस गाने को चाइनीज लोगों ने गाया, मैं यूएस गया था वहां पर भी जो नॉन इंडियन है उन लोगों ने गाना गाया, ये तब मैं एकदम अचंभित रह गया कि अरे बाप रे, इसका मतलब आप अच्छे दिल से काम कीजिए, लोग के दिल तक बात पहुंचती है।
बिल्कुल, दिलों को आपने छू लिया, सबके दिलों तक आपकी बात पहुंची। कितना लोकप्रिय हुआ है ये गाना और तरह तरह के अवार्ड्स के लिए गया, आपको भी पुरस्कार मिले हैं। अब यहाँ पर
जनता का जो प्यार मिला वो सबसे बड़ा हुआ।
बिल्कुल, जनता के प्यार के आगे तो कोई पुरस्कार नहीं है ना,
सबसे बड़ा पुरस्कार वही है
जी। लेकिन आप तो कभी लॉयर बनना चाह रहे थे और शायद आपने प्रैक्टिस भी किया थोड़ा टाइम तक।
हाँ जी, लगभग 3 साल।
तो ये जो मोड़ आया आपके जीवन में, ये कैसे आ गया?
क्या है मैं बताऊँ, मैं बचपन से ही थोड़ा लिखने की तरफ रुझान हो गया था। क्या है, ओरिजिनली मैं एक बंगाली हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरी हिंदी जो है वो मेरी बोलचाल की भाषा बनी और मेरे अब तो जीवन का अभिन्न अंग है। तो हुआ ये कि हम लोगों के यहाँ पर बंगाली में जनरली बच्चों को पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई के अलावा थोड़ा फाइन आर्ट्स के लिए भी वो किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, कोई गाना चाहे, कोई आर्ट करना चाहे, कुछ कुछ करना चाहे। तो
जी,
तो हमारे यहाँ भी ऐसा था एक माहौल। और फिर क्या है, आपने अगर इंडिया का देखा होगा कि जब डायरी पुरानी हो जाती है तो बच्चों को दे दी जाती है, चाहे वो डायरी पूरी रहती है, जब वो नया साल आ जाता है तो वो डायरी जो हम लोग बच्चों को देते हैं, मुझे भी हर साल कुछ रंग बिरंगी डायरी मिला करती
जी।
तो एक रंग बिरंगी डायरी मिली, इसमें क्या लिखूं क्या लिखूं, तो उसमें मैं कुछ कविता जैसा लिखने लगा।
अच्छा।
तब मेरी उम्र करीब 12 साल साढ़े 12 साल के आसपास थी, और वो छुपा के रखता था, मैं किसी को दिखाता नहीं था।
अच्छा।
तो 16 साल में वो डायरी मेरे माता जी के हाथ लगी कि सफाई करते, तो उन्होंने पढ़ा उसको, और मैं स्कूल से आया, जब उन्होंने पूछा तुमने लिखा है, तो मैं डरते डरते कहा हाँ जी, तो लिखी रहा तो ठीक से लिखो, इस लाइन को ऊपर लाओ, इस लाइन को नीचे लाओ, मतलब और अच्छा हो जाएगा
जी।
वहां से एक सफर की शुरुआत हो गई।
हाँ।
और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में मतलब 15 वर्ष हो गए काम करते हुए
जी। हाँ, तो फिर बॉलीवुड में किस तरह से आना हुआ?
बस वो फिर जब लिखने लगे तो कॉलेज के डेज में भी लिखते थे, अखबारों में लिखते थे बहुत सारे, हम जहाँ उत्तर प्रदेश में बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट था वहाँ काफी रहना हुआ, हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, तो वहाँ पर काफी कवि सम्मेलन और मुशायरों का भी एक वो होता है माहौल था
जी,
तो वहाँ जाया करते थे, सुनने जाते थे, फिर धीरे लोगों को पता चला कि लिखते हैं तो वहाँ बोलने भी लगे और इंकरेजमेंट मिलने लगा। फिर धीरे धीरे एक बार ये किताबें निकले, फिर मैं दिल्ली जब आया तो 1997 और 1998 में दो किताबें प्रकाशित हुई, एक का कविता का संकलन है मुझको कुछ भी नाम दो, और दूसरी गजलों का कंपाइलेशन है जिसका नाम है दर्पण अभियंता। तो बस फिर करते रहे, फिर ये लगा कि जो बात हम कह रहे हैं इसको और विस्तार मिलना चाहिए, और सिनेमा के जो गीत थे, एक तरफ तो साहित्य चल रहा था मेरे दिमाग
जी, मैं वही पूछने जा रही थी जी।
हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ सिनेमा का गीत जैसे शैलेंद्र जी हैं, मजरू सुल्तानपुरी हैं
जी,
शकील बदायूनी हैं, साहिल लुधियानवी हैं, आनंद बख्शी साहब, इनके अगर गानों को आप ध्यान से सुनेंगे, खासकर जो थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है हमारे 50s, 60s, 70s, 80s तक के, उन आप देखेंगे बहुत गहरी शायरी फिलोसफी है, चाहे वो किसी भी मौजू पे वो बात कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग के जीवन का अंग, हम सब फिल्मों के गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो रेडियो पे हर वक्त वो विविध भारती आता था हमारे यहाँ पर, और भी अलग अलग प्रोग्राम होते थे, तो और हाई स्कूल पास करने का मुझे ट्रांजिस्टर गिफ्ट हुआ था।
अच्छा।
तो वो मेरे पास हर वक्त रहता था, मुझे याद है, तो उसको मैं बहुत सुनता था, जगह जगह स्टेशन लगा लगा गाने सुनता था।
यानी कह सकते हैं कि जो प्रेरणा स्रोत्र थे वो सारे आप हमेशा बराबर आपके कानों में गूंजती रहती थी, उनकी कविताएं, उनकी शायरी।
बिल्कुल बिल्कुल, और एक अच्छी बात है कि उन दिनों जब रेडियो पे प्रोग्राम होते थे, तो जो हमारे वहाँ आरजे होते थे जिनको आजकल आरजे कहते हैं, वो लोग बीच बीच में कोट करते थे, बहुत अच्छी अच्छी पोएट्री शायरी भी कोट करते थे गाने के पहले
जी।
तो वो सब बड़ा इंस्पायरिंग होता था मेरे लिए, तो मैं सोचता था काश मैं भी ऐसा लिख सकूं, कभी ऐसा लिख सकूं, तो ऐसे करते करते कहां पता नहीं मन के अंदर एक वो बात रह गई और फिर जहाँ चाह वहां रहा वही तो बस घूमते घुमाते
जी बहुत बहुत अच्छी तरह से आपका सफर यूपी से शुरू हुआ, दिल्ली में आए और अब मुंबई में पहुंच गए हैं। एक सफर जो है उसकी कितनी मधुर यादें हैं आपके पास में, हर मौसम की यादें हैं आपके पास में।
जी 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 जी।
आप फिल्मों के लिए भी लिखते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ
जी,
और मैंने कई फिल्में लिख रहा हूँ। और मैं एक खबर जो पहली बार किसी रेडियो स्टेशन पे दे रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी फिल्म बनाने जा रहा हूँ एज अ राइटर डायरेक्टर।
अरे वाह, तो यानी हम इस बात के लिए गर्वित हो सकते हैं कि हमें आपने सबसे पहले ये बताया है कि आपकी लिखी हुई और आपकी ही निर्देशित एक फिल्म भी आएगी जल्द ही।
जी बहुत जल्दी, भगवान ने चाहा तो 2016 में ही रिलीज होगी, ज्यादा से ज्यादा 2017 की शुरुआत में रिलीज होगी।
अच्छा।
ये एक मैं सोशल सटायर बना रहा हूँ जिसमें कॉमिक बुक है और बहुत ही कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट है, आज के सामाजिक स्थितियों पर परिस्थितियों पर ये आधारित है। और मैं चाहूंगा जब वो फिल्म आएगी तो उसके गाने भी आपके रेडियो स्टेशन से जरूर बजे।
बिल्कुल, आपके गाने बजेंगे, उस फिल्म के गाने भी बजेंगे जी, और आपकी उस फिल्म को खूब सफलता मिले ये हम आपको अभी ही शुभकामनाएं दे रहे हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों को संदीप नाथ का नमस्कार।